हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सोनल की आंखों में रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी थी और देखते ही देखते अक्षत सोनल परी के साथ वहां से गायब हो गया था। सोनल परी अक्षत खुराना को अमन के बगीचे में ले आई थी। रानी परी ने पहले ही 3 परियों को परलोक से अमन के बगीचे में भेज दिया था और सोनल परी को भी सूचित कर दिया था कि उसे जल्द से जल्द बगीचे में पहुंच जाना है। अपना नृत्य कार्यक्रम जितना जल्दी हो सके शुरू करो। अक्षत वहां पहुंचकर हैरान हुआ और बोला, तुम मुझे इस बगीचे में क्यों लाई हो? सोनल परी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं यहां आपका मनोरंजन करने लाई हूं। यहां 4 परियां नृत्य कार्यक्रम करेंगी और तब तक आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ परियों का नृत्य देखना है। अक्षत हैरान हो गया, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो कम से कम सोनल परी को देख पाएगा और उसके साथ रह पाएगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं नृत्य कार्यक्रम देखने के लिए तैयार हूँ। बताओ कार्यक्रम कब शुरू होगा? सोनल परी ने कहा, आप यहाँ एक जगह बैठ जाइए, बहुत जल्दी ही नृत्य कार्यक्रम शुरू होगा। ये कहकर वो जिन महाराज से आज्ञा लेने बरगद के पेड़ के पास गई, जहाँ दादा महाराज समाधि लिए हुए थे। उसने उन्हें अपने नृत्य कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि वो अपने कुलगुरु को प्रसन्न करने के लिए उनके बगीचे में नृत्य करना चाहती है। दादा महाराज ने कहा, ठीक है, आप अपना नृत्य कार्यक्रम यहाँ कर सकती हैं। हम अपनी जादुई शक्तियों से पूरे बगीचे को इस तरह से कर देंगे कि कोई भी, चाहे इंसान हो या जिन, आपको नहीं देख पाएगा। दादा महाराज के कहने पर सोनल परी खुश हो गई और उनका धन्यवाद किया। देखते ही देखते रीत परी समेत बाकी की 2 परियां भी आ गईं। सोनल परी उनके गले मिली और फिर हल्का सा पूजा कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अमन के बगीचे के सरोवर के पास अपना नृत्य कार्यक्रम शुरू कर दिया। अक्षत खुराना ध्यान से सब कुछ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो स्वर्ग में आ गया हो और उसके सामने रंभा, उर्वशी, मेनका सभी अप्सराएं नृत्य कर रही हों। वो बहुत खुश हो रहा था। अब उसे मरने का भी दुख नहीं था। दूसरी ओर अमन और तारा ने मिलकर ऑफिस का सारा काम संभाल लिया था। उन्होंने ऑफिस का मैनेजर राधिका के पिता को बनाया था, क्योंकि राधिका के पिता अमन और तारा को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। अमन को उन पर पूरा भरोसा था। अमन एक जिन महाराज था और उसे पता नहीं था कि उसे कब, कहाँ, किस काम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने राधिका के पिता को मैनेजर बना दिया था। तारा परी इस बात से बहुत खुश थी। उसे यकीन था कि घर जाकर उसे अमरेंद्र और करिश्मा जी मिल जाएंगे, क्योंकि मलिका के शरीर को मुखाग्नि दे दी गई थी, इसलिए तारा परी को इस बात का सुकून था कि करिश्मा और अमरेंद्र जी के रहते काली परी अमन पर हमला नहीं करेगी और उसे बचा लेगी। तारा परी अमन के साथ घर की ओर रवाना हो गई। दूसरी ओर काली परी अक्षत के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के बाद बहुत खुश थी। उसे सिर्फ एक बार और अक्षत के साथ रिश्ता बनाना था। जैसे ही उसकी उम्र कम होगी, वो एक बार फिर उसके साथ रिश्ता बना लेगी और फिर रक्षा की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके जिन्नातों के वंशज का अंत कर देगी। उसने अपने प्लान के अनुसार तारा की शक्तियों को कुछ पल के लिए बंद कर दिया था, फ्रूट कस्टर्ड के द्वारा तारा के शरीर में अपनी बुराई का कुछ अंश डालकर। लेकिन उसे ये भी पता था कि जिन्नातों का वंशज तारा के पेट के अंदर से उसकी शक्तियों को तेजी से खत्म कर देगा और बुराई का अंश खत्म होते ही तारा की शक्तियां फिर से जागृत हो जाएंगी। तारा इस बार उसे कड़ा मुकाबला दे सकती है, लेकिन उससे पहले उसे एक बार और अक्षत के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना है। जब तक काली परी अक्षत के साथ रिश्ता नहीं बनाएगी, तब तक वो राक्षस की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगी। काली परी को हर हाल में एक बार और अक्षत के साथ रिश्ता बनाना था, उसके बाद वो तारा परी को अगवा कर सकती थी। काली परी का प्लान पूरी तरह से तैयार था। उसे बस एक बार और अक्षत के साथ रिश्ता बनाना था, फिर तारा परी को अगवा करके उसे एक ऐसी जगह रखना था जहां वो जिन्नातों के वंशज को पैदा करवा सके। उसके बाद वो अपने हाथों से जिन्नातों के वंशज का अंत कर सके और फिर तारा परी का रूप लेकर अमन के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके। वो तारा को हमेशा के लिए गुमनामी की दुनिया में कैद कर सकती थी, क्योंकि तारा ने ही उसका राज रानी माँ के सामने खोला था। दूसरी ओर सोनल परी ने अक्षत खुराना को एक जगह बिठा दिया था और नृत्य कार्यक्रम शुरू कर दिया था। अक्षत खुराना की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अभी तक 7 घंटे पूरे नहीं हुए थे और उसकी उम्र 30-32 साल ही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर पर झुर्रियां आने लगी थी और उसकी उम्र 55 साल के करीब हो गई थी। अक्षत खुराना को जैसे ही अपने हाथ पैर पेट का एहसास हुआ, उसे बहुत रोना आया, क्योंकि वो आराम से परियों का डांस एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बूढ़ा हो रहा था, उसकी हिम्मत भी टूट रही थी। हालांकि उसने सोनल परी से वादा किया था कि अगर उसका शरीर और भी ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा तो वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दिल कर रहा था कि वो अमन सिंह राठौर के बगीचे के सरोवर में डूबकर अपनी जान दे दे, लेकिन फिर उसका ध्यान सोनल परी पर गया जो नृत्य करते हुए उसे देख रही थी। उसे जीने की इच्छा भी हो रही थी, लेकिन अपने शरीर को देखकर उसका मरने का भी दिल कर रहा था। दूसरी ओर अमन और तारा जल्दी ही अपने घर लौट आए थे। जैसे ही उनकी निगाह करिश्मा जी और अमरेंद्र जी पर पड़ी, दोनों बहुत खुश हो गए। अमरेंद्र जी ने अमन को गले लगा लिया और कहा, मुझे पूरी उम्मीद थी बेटा कि तू हमें नहीं छोड़ेगा, तूने हमारी मदद की है। उस काली शक्तियों के जंगल में अगर तू समय पर किसी जिन को मल्लिका के शरीर को मुखाग्नि देने के लिए नहीं भेजता तो न जाने क्या हो जाता, और हो सकता है कि हमारी जान भी चली जाती। अमन हैरान हो गया और बोला, लेकिन पिताजी मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अमरेंद्र जी के माथे पर बल पड़ गए। करिश्मा जी थोड़ी शकपक हुई क्योंकि उसे पता था कि किसने मदद भेजी थी, लेकिन वो इस तरह से उसका जिक्र नहीं कर सकती थी। तारा परी ने करिश्मा जी की ओर देखा और अपना सर झुका लिया। करिश्मा जो समझ गई कि तारा नहीं चाहती कि उसका राज किसी के सामने आए। तारा परी सोच रही थी कि अगर करिश्मा जी उसका सच अमन और अमरेंद्र जी को बता देती हैं तो वो बात कभी भी साबित नहीं कर पाएंगी और सबके सामने करिश्मा जी झूठी साबित हो जाएंगी, इसलिए मजबूरन उसे चुप रहना पड़ा। करिश्मा जी ने कहा, अमरेंद्र जी मैंने आपसे कहा था ना, वो जिन जरूर दादा महाराज ने भेजे होंगे, अमन को उसके बारे में नहीं पता होगा। अमरेंद्र जी हैरान हुए और बोले, हाँ शायद तुम सच कह रही हो, हमसे ही समझने में कुछ भूल हुई होगी। वो दरअसल कितने दिनों से बिना शक्तियों के इंसानों की तरह जीवन जी रहा हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ सोच समझ नहीं पाता हूँ। करिश्मा जी उनके पास आई और बोली, देखिए आपके सामने आपकी तारा खड़ी है जो बहुत जल्द आपके वंशज को पैदा करने वाली है। वो आते ही आपकी सारी शक्ति आपको लौटा देगा। बस कुछ दिनों बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, एक भी गम नहीं होगा। करिश्मा जी के कहने पर तारा परी को मन ही मन में कुछ दुख हुआ। वो सोच रही थी कि उसके आने वाले वंशज पर इन लोगों ने कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि मैं उसे लेकर चली जाऊंगी तब इन लोगों का क्या होगा। क्या वो मेरे पास परीलोक में रहेगा या वापस धरती लोक पर आ जाएगा, फिर मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। कई सारे सवाल तारा के दिमाग में चलने लगे थे।
सोनल परी जो उस वक्त नृत्य कर रही थी ने अक्षत खुराना के चेहरे पर मायूसी देख ली थी। वो समझ गई थी कि अक्षत के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षत किसी भी वक्त अपनी जान दे सकता था, लेकिन सोनल परी ये नहीं चाहती थी। वो नृत्य कार्यक्रम भी बीच में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो अक्षत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी ताकि वो कोई गलत फैसला ना ले ले। अक्षत बार बार अपनी जान देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हर बार उसकी निगाह सोनल परी पर जाकर ठहर जाती थी। वो खुद को रोक रहा था। पूरा दिन खत्म हो चुका था, लेकिन कुलगुरु प्रसन्न नहीं हुए थे और पूरी रात सोनल परी नृत्य करती रही थी। रीत परी समेत बाकी की तीन परियां भी पूरी रात नृत्य करती रहीं, लेकिन कुलगुरु का कहीं नामो निशान नहीं था। अक्षत खुराना बैठे बैठे सो गया था। उसके सोने के बाद सोनल परी ने राहत की सांस ली और लगातार नृत्य करती रही। रानी परी जो परीलोक में सोनल परी और बाकी परियों को नृत्य करते हुए देख रही थी, मन ही मन सोचने लगी थी कि ना जाने उनके परी पर आए इस दुख के बादल कब छटेंगे और कब कुलगुरु प्रसन्न होकर सोनल परी को वरदान देंगे। अगर एक बार कुलगुरु प्रसन्न हो जाते हैं और अक्षत को ठीक कर देते हैं तो काली परी का जवानी छीनने वाला वरदान हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। उन्हें भी कुलगुरु के प्रसन्न होने का इंतजार था। मसला ये था कि क्या कुलगुरु वाकई पृथ्वी लोक जा पाएंगे और सोनल परी की मुराद पूरी कर पाएंगे। रानी परी के मन में दुविधा चल रही थी। तभी अचानक रानी परी के कानों में एक भयानक आवाज सुनाई दी। क्या जिन्नातों का वंशज बहुत जल्द आने वाला है? क्या वाकई जो उम्मीदें जिन्नातों के वंशज से लगी हुई हैं वो पूरी होंगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।